घर का पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से प्रभु तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता पर्वत भी झुक जाता
एक समुद्र तट पर बहुत सारे पंडित ज्ञानी विद्वान शास्त्रज्ञ इकट्ठा होते हैं और ये चर्चा छिड़ जाती है कि समुद्र कितना गहरा है भी या नहीं, अथाह है या उसकी थाह है। कोई कहते हैं आज तक उसको किसी ने नापा ही नहीं है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो बहुत गहरा है। कोई कहते हैं परंतु शास्त्रों में लिखा है कि वो बहुत गहरा है, अथाह है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और इस तरह बहुत बड़ी बहस उस समुद्र तट पर चलती है और ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं उन्हें सुनने के लिए। उस भीड़ में दो नमक के पुतले भी होते हैं और दो नमक के पुतले सामने आते हैं और वो लोग कहते हैं कि इससे विवाद से क्या होगा, हम खुद ही कूदते हैं और पता करके आते हैं कि सागर कितना गहरा है, सागर था वाला है या अथाह है। और सबके सम्मुख वो दो नमक के पुतले छलांग लगा देते हैं सागर में और अंदर ही अंदर डूबते जाते हैं, सोचते रहते हैं और कितना गहरा है और कितना गहरा है और कितना गहरा। और जब नीचे पहुंच जाते हैं और अब ऊपर आने की बारी होती है तो वो पुतले पाते हम तो है ही नहीं, क्योंकि नमक तो पानी में घुल गया, वो पानी के साथ एक हो गए। बाहर बैठी भीड़ अभी भी इंतजार कर रही है। दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, उन्होंने सोचा अब ये दो पुतले नहीं आएंगे और चर्चा अब भी जारी है कि सागर अथाह है या थाह वाला है, कितना गहरा है ये अब तक पता नहीं किसी को। क्योंकि जो गए वो लौट के नहीं आए। कौन बताएगा कि कितना गहरा है, क्योंकि जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। गए तो दो थे पर अंततः केवल सागर ही रहा, दो रहे ही नहीं, द्वैत रहा ही नहीं, अद्वैत हो गए। उसी तरह ये परमात्मा भी कौन है? सागर है। किसका सागर है? प्रेम का सागर है। अगर कोई तट पर बैठकर अन्वेषण विवेचन विश्लेषण करता रहे कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, वो कितना गहरा है, उसका प्रेम कैसा है, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, केवल तर्क। और जो इस सागर में उतरता है इस जिज्ञासा से ये सागर कैसा है, वो शायद लौट के कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रभु प्रेम का सागर है। इस प्रेम के सागर में चेतना विलीन हो जाती है और वो सागर और वो चेतना एक हो जाती है। इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये सागर कितना कठिन है, परंतु ये जो मार्ग है सागर में डूबने का कठिन है तो बहुत सहज भी, परंतु कठिन भी बहुत है, क्योंकि इसमें डूबने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए, तो ही इस सागर में डूबा जा सकता है। रहीम ने बहुत अच्छा लिखा है, रहीम मम मोम तुरंग चढ़ी चली वो चाह पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभवत नाही। लिखा है प्रेम का जो मार्ग है वो ऐसा है जैसे कोई मोम का पुतला है, मोम का पुतला घोड़ा, और वो कहां जा रहा है? चरिबत पावक माही, आग पर चल रहा है। मोम का पुतला कहां चल रहा है? आग पर। तो ये जो मार्ग है ये प्रेम का पथ है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभवत नाही। परंतु जो इस मार्ग पर चल पड़ता है उसके लिए सब कुछ क्या हो जाता है? सहज हो जाता है। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अगन लगाने से तूफा भी तोफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफा भी तोफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है, हम जाने प्रभु या तुम जानो। क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफा भी तोफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से। तो अभी अभी व्यक्तवाणी चली है बाबा की, सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुख बनने का वायदा करो और फायदा लो। रिकॉर्डेड मुरली है 15 नवंबर 2005 की और चली है अभी अभी 1 नवंबर 2020 में। तो पूरी मुरली किस विषय पर है? स्नेह पर, प्रेम पर। प्रेम की किस बातों से तुलना की गई है मुरली में? प्रेम पानी है। ज्ञान क्या है? बीज। ज्ञान बीज है, परंतु इस ज्ञान के बीज को फलीभूत करने वाला जो है वो क्या है? प्रेम है। अगर प्रेम का पानी नहीं केवल ज्ञान है तो जीवन कैसा होगा? नीरस, रुखा सुखा, उसमें मौज नहीं होगी, उसमें मेहनत होगी। और जहां प्रेम है वहां मेहनत नहीं, जहां प्रेम है वहां मुश्किल नहीं, जहां प्रेम है वहां पर कोई बोझ नहीं। यदि ड्यूटी समझकर कुछ किया जाता है, कर्तव्य समझकर केवल, तो एक बोझ जैसा लगता है। पर जहां प्रेम घुल जाता है तो वो कर्तव्य, वो ड्यूटी केवल ड्यूटी नहीं रहती, वो जीवन बन जाता है। इसके लिए बाबा ने कहा, यदि प्रेम नहीं तो जीवन निरस, यदि प्रेम नहीं तो मेहनत। और जहां मोहब्बत है वहां पर मेहनत नहीं है। इसके पहले भी सुनाया था कभी, छोटी सी बच्ची जा रही है पहाड़ी पर, सन्यासी भी जा रहा है, कड़ी धूप है, दोपहर का समय है, पसीना आ रहा है, बहुत चढ़ाव है। सन्यासी उस छोटी सी लड़की को देखता है कि उसके कंधे पर कितना बोझ है, फिर भी वो खुश है। जब नजदीक आती है तो देखता है कि उसके पीछे तो एक बच्चा है, पूछता है, तू थकती नहीं है? वो कहती है नहीं। पूछता है, ये बच्चा कौन है? कहती है, मेरा भाई। तुमको बोझ नहीं लगता? वो कहता है, ये मेरा भाई है और भाई का बोझ नहीं होता। हाँ, अगर उसे किसी ने काम दिया होता और कहता है कि ये बोरा ऊपर पहुंचा दो, पैसे मिलेंगे, तो शायद इतना इतना प्यार से नहीं उठाती। तो जो चीज प्रेम से की जाती है, लीनता से की जाती है, लगन मगन होकर की जाती है, तो उसमें फिर मेहनत नहीं, उसमें बोझ नहीं, उसमें थकावट नहीं, उसमें बोर्डम नहीं, सहज। यहां से अब रोड तक चले जाओ, यदि आत्माभिमानी हो तो थकेंगे नहीं। कभी दिल्ली के लिए भी बोला है। तो सबसे पहली उपमा, तुलना, भगवान हमेशा उपमा से समझाता है, नहीं तो प्रेम को कैसे समझाए? प्रेम अवाक अकथनीय है। प्रेम को किस परिभाषा से समझाया जा सके? प्रेम परिभाषा से परे है, अकथनीय। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, प्रेम की उपमा की जा सकती है कि प्रेम इसके जैसा है, प्रेम ऐसा है, तो समझो कैसा हो सकता है। अगर बीज है परंतु पानी ही ना मिले तो शायद कभी अंकुरित ना हो। इसके लिए इस ब्राह्मण जीवन का प्रेम क्या है? दूसरा फाउंडेशन। क्या कहा बाबा ने? नींव है, आधार है। केवल ज्ञान से, इस ज्ञान में बहुत कम लोग आए हैं, ज्यादा किससे आए हैं? प्रेम से। बहनों ने जो स्नेह दिया, जो स्नेह का अनुभव उनको हुआ, उसी के आधार से खींचे चले आए। इसीलिए स्नेह क्या है? चुंबक। तीसरी तुलना, मैग्नेट। स्नेह ने सबको क्या किया? खींचा है। यहां क्यों आए हो, ये प्रश्न मुरली में पूछा गया है। किसने खींचा? बाप के स्नेह ने खींचा है, इसलिए आए हो। तो स्नेह चुंबक है, स्नेह नींव है, स्नेह पानी है, और स्नेह क्या है? विधि है। कौन सी विधि? समान और संपन्न बनने की स्नेह क्या है? विधि है। और तुम सभी को बाबा ने क्या कहा है? स्नेह के तुम पात्र बने हो, बाप के स्नेह के पात्र बने हो। इस स्नेह को समझना है, ये स्नेह कैसा है, क्या इस स्नेह की विशेषता है, और इस स्नेह में क्या क्या लीकेज, उसकी भी एक फहरिस्त गिनाई है बाबा ने। क्यों ये स्नेह लीकेज होता है? ऐसी कौन सी बातें आ जाती है जिससे ये स्नेह कम हो जाता है? तो शुरुआत में क्या कहा बाबा ने? किस से मिलने आए हैं बाबा? सर्वश्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी बच्चों से और स्वमानधारी बच्चों से। स्वमानधारी बाबा ने कहा कि तुमको बाप ने स्वयं से भी ऊंचा उठाया है, तो ऐसे वो कौन से स्वमान है जिसमें हम बाप से भी ऊंचे हैं? बाबा ने कहा तुमको बाप ने सिर का ताज बनाया, बाप ने स्वयं को क्या कहा तुम्हारा? सेवाधारी। तुमको बाप ने पैरों में गिरने से बचाया, तो वो कौन से समान है कि जिसमें हम बाबा से भी ऊंचे हैं? जो भगवान भी नहीं है वो हम है, वो कौन से समान है जिसमें हम बाबा से भी ऊंचे? डबल मालिक, पूजा भी डबल। बाबा ने कहा यहां अगर तुम सम्मान दोगे तो राज्य अधिकारी में जब बनोगे तब तुम्हें सम्मान मिलेगा, और द्वापर से तुम्हें भक्तों द्वारा सम्मान मिलेगा। तो डबल सम्मान, डबल मालिक। कौन कौन से डबल मालिक? वैकुंठ के मालिक, विश्व के मालिक और ब्रह्मांड के भी मालिक तुम बनते हो, और भगवान तुम्हारा सेवाधारी है, भगवान तुम्हारे पाव दबाता है, और धोबी है तुम्हारे कपड़े धोने आया है, और बाप बच्चों के नाम की माला जपते हैं, और ऐसे वो कौन से समान है जिसमें हम उससे भी बड़े हैं? बाप के भी बाप, बाप हमारे गुणगान करते हैं, हमारे गीत गाते हैं, हमारी महिमा करते हैं। भक्त जिसे ढूंढ रहे हैं वो किसके पीछे पड़ा हुआ है? भक्त जिसके पीछे है वो किसके पीछे है? कबीर कहता है ना, निर्मल मन कबीर का क्या है, पीछे पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीर ने अपने मन को इतना शुद्ध इतना निर्मल कर दिया है कि अब पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर, हे कबीर हे कबीर करते कहते हरि पीछे पड़ा हुआ है। पहले हम उसके पीछे पड़े थे, दुनिया उसको ढूंढ रही थी, अब वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसे ढेर सारे समान है। भगवान हमें शुक्रिया करता है, भगवान हमें थैंक्स करता है, दुनिया क्या कहती है? थैंक गॉड। और भगवान क्या कहता है? थैंक्स बच्चे। वो हमको थैंक्स करता है, वो हमको शुक्रिया करता है, वो हमारी सेवा में आया है, वो इतना ऊंचे ऊंचे सम्मान हमको देता है, वो हमको नमस्ते कहता है। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो, पवित्र बनो। एक कहावत है कि जब हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है, मल रहित हो जाता है, तब भूख लगना बंद हो जाती है। जिसके शरीर से सारे टॉक्सिन्स निकल गए, शुद्ध शरीर हो गया है, उसे फिर भूख बहुत कम लगती है और ऊर्जा बहुत अधिक होती है शरीर में। उसी तरह जब मन प्रभु प्रेम से भर जाता है या शुद्ध हो जाता है, तो जितनी भूख है, फिजिकल शारीरिक भूख, इंटेलेक्चुअल भूख, बौद्धिक हंगर, इंटेलेक्चुअल हंगर, भावनात्मक भूख, चौथी भूख है इमोशनल हंगर, स्पिरिचुअल हंगर, आध्यात्मिक प्यास, ये चार प्रकार की प्यास है। शारीरिक, शारीरिक प्यास, सारा संसार इसी को तृप्त करने में लगा है, परंतु आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जितना भी तृप्त करो ये प्यास बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। शारीरिक प्यास दो प्रकार की है, एक भोजन एक काम। ये प्यास कभी नहीं बुझती, कितना भी खाओ। मिटती ही नहीं। काम विकार, वंस मोर की कामना के साथ ही व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मिटती ही नहीं। ये फिजिकल हंगर बनी ही रहती है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ये क्या है वो क्या है, कितना जाने। कुछ भी चीज डालो इंटरनेट पर, हजारों चीजें आ जाती है। सारा के सारा जानने की कोशिश करो तो व्यक्ति एक दिन पागल हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी सूचनाएं संसार में है। भूख है वो भी एक भावनात्मक भूख, प्यार चाहिए, सब कुछ है। अमीरों की समस्या क्या है? प्यार ही नहीं है। उनकी समस्या पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, इतना बड़ा घर है कि उसमें स्विमिंग पूल से लेकर सब कुछ है, इतनी संपत्ति है, इतना मान सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा है, ऐसा कुछ नहीं है जो उनके पास नहीं है। परंतु फिर भी अंदर से दुखी है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस है। पति पत्नी है पर एक दूसरे से बात नहीं करते, बच्चे हैं पर टाइम नहीं है उनके लिए। इमोशनल हंगर और स्पिरिचुअल हंगर, जिनको ये सारे नहीं है वो आध्यात्मिक हंगरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जी रहे 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से। दुनिया उनको बहुत सुखी समझती है, सुबह अमृत वेला, मुरली, ब्रह्मा भोजन, मौन, एकांत, संसार की कोई झंझट नहीं है, दूर रहते हैं एकदम, तपस्या में लगे हुए हैं, पर अंदर से तृप्ति नहीं है, क्योंकि अंदर द्वंद्व चल रहा है संस्कारों का। अंदर से वही है जो 50 साल पहले थे, वही वासनाएं, वही काम विकार बहुत दबे हुए अंदर ही अंदर हैरान कर रहे हैं, वही संस्कार। लोग कहते हैं इन्होंने बहुत प्रगति कर ली अध्यात्म में, पर उनको पता है हम वही हैं जहां थे। कपड़े बदले हैं, बैच लग गया है, स्थान बदली हो गया है, समारोह हो गए हैं, अनगिनत बाबा से मिलन हो गया है बाहर, परंतु अंदर अतृप्ति है। ये भूख मिटी नहीं है, भूख अब भी है। भूख तभी मिटेगी जैसे रक्त शुद्ध हो जाता है और मल रहित हो जाता है, तो भूख कम हो जाती है, क्योंकि अभी तक मन की शुद्धि नहीं हुई है। इसलिए इस मुरली में बाबा ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है, जितना बाप से प्यार है उतना सबसे परिवार से है, क्योंकि प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तुमको किससे लेना है? परिवार से। ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्या ये वास्तव में संभव है सबसे प्यार करें? बाबा ने कहा बाप का सब, बाप को सब प्रिय है, कोई भी अप्रिय नहीं। बाप से तुम्हारा 100% प्रेम है, क्या ऐसा ही प्रेम तुम्हारा सबसे है, सभी ब्राह्मण आत्माओं से है? बाप का प्रेम जो आज आए हैं उनसे भी है, तो जो आज ही आदि रतन है उनसे भी है, जो 16,000 का लास्ट मन का है उससे भी है, जो प्यादा है उससे भी है, सभी से प्यार है, क्या ऐसा ही प्यार है? और बाप का प्यार क्यों है? केवल दो छोटे कारण है, छोटे भी है बड़े भी है। एक तो बाप को पहचाना और मेरा बाबा कह दिया, बस ये दो चीजें किसी ने कर दी तो बाप का प्यारा उतना ही प्यारा जितने आदि रतन है। ये तो हमको भी पता है कि इसने मेरा बाबा कहा है और इसने बाप को पहचाना है, पर प्यार तो नहीं है, क्योंकि हमें क्या दिखता है? कमजोरी। बाबा ने कहा अगर कोई अच्छी चीज ना हो सामने आ जाए तो क्या करते हो? देखते रहते हो या किनारा करते हो? तो मुरली की शुरुआत दो स्वमान से है, तुम सब कौन हो? स्वराज्य अधिकारी और स्वमानधारी। और बाप ने तुम्हें अपने से भी ऊंचे स्वमान दिए हैं। कौन से स्वमान दिए? बाप ने तुम्हें गिरने से बचाया है पैरों में, बाप ने तुम्हें सिर का ताज बनाया है। उसके बाद समानधारी आत्माओं की चार निशानियां सुनाई है। कौन सी? ये निशानी यदि हम में है, ये लक्षण यदि हम में है, ये साइंस यदि हम में है, ये बातें यदि हम में दिखाई दे रही है, तो ही कहा जा सकता है हम अंदर ही अंदर स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं। नहीं तो हम स्वमान का अभ्यास नहीं कर रहे। और स्वमान क्या करता है? देहभान को मिटाता है, अभिमान को मिटाता है। अर्थात हम देह अभिमान में है यदि स्वमान का अभ्यास अंदर नहीं चालू है। पहला है, जो समानधारी होगा वो सबको क्या करेगा? सम्मान देगा। ये बहुत बड़ा काम है। कैसे सभी को सम्मान दिया जाए? जो हमारा बहुत सम्मान करता है उसको तो हम बहुत सम्मान देते हैं। जो हमारी दिन रात महिमा करता है, स्तुति करता है, उसको सम्मान देने में तो कोई ऐतराज ही नहीं। और जो मर गया है उसको तो खुले दिल से इतना सम्मान कर सकते हैं, उसके ऊपर एक घंटा बोल सकते हैं भाषण। पर जो वो जिंदा था तब तो बहुत मुश्किल थी। जब ईसा मसीह जिंदा था उसके विरोधी कम नहीं थे। उसके जाने के बाद क्या क्या खड़ा कर दिया उसके लिए। उसने खुद लिखा है, फॉक्सेस हैव होल्स, बर्ड्स हैव नेस्ट, बट दिस सन ऑफ मैन हैथ नॉट वेयर टू ले हिज हेड। वो लिखता है, पंछियों के लिए घर है, पशु पक्षियों के लिए घर है, पर मेरे लिए तो सिर रखने की जगह नहीं है। ऐसा उसने खुद लिखा है। लोग उसे रहने नहीं देते थे, भगा देते थे। और वो मरने के बाद कितने बड़े बड़े चर्च बनाए गए, पर वो जब था कुछ नहीं था। तो सम्मान देना, किसको सम्मान देना? सबको। सब में भी कौन? जो छोटे हैं, पद में छोटे हैं, उनको सम्मान देना। जो बाहर से आए हुए हैं, जो अज्ञानी हैं, सेवाधारी अभी भी आए हैं, नए नए ज्ञान में, हम उनको इस तरह से ना देखें कि इनको क्या पता। जो भी छोटे हैं सभी को सम्मान देना, ये बहुत बड़ी कला है। एक दूसरा, जो पद में छोटे हैं, प्रोफेशन में छोटे हैं, ज्ञान में छोटे हैं, अनुभव में छोटे हैं, उन सबको सम्मान देना। और उससे भी बड़ा, जो निंदा करता है, जो ग्लानी करता है, ज्यादा तो कम दे उतना भी बहुत है। ये कठिन काम है थोड़े, क्योंकि हमारे मन में जिन आत्माओं के साथ हम रहते हैं उनके प्रति निगेटिव इंप्रेशंस अंदर भरे पड़े। एक तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, कौन सी आत्मा है जिनके लिए हमारे मन में नेचुरली निगेटिव इंप्रेशंस है। उनको देखते ही पता चलता है कि ये जो है ना ऐसा है। माना ये संसार धोखेबाज है, माना ये संसार में सभी स्वार्थी है, पर भगवान खुद कहता है कि मेरा प्यार सबसे है, मेरे प्रिय सब है, कोई भी मुझे अप्रिय नहीं है। कुछ भी, कोई भी, कैसा भी हो, उसमें कुछ तो विशेषता है, कुछ तो है उसमें बस। क्योंकि यदि हम उसकी कमजोरियों का चिंतन करेंगे तो वो धीरे धीरे मेरा हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज है, जो समानधारी है वो सभी को सम्मान देगा। दूसरा, वो निर्माण होगा। निर्माण अर्थात जिसे मान की कोई कामना नहीं। मान मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ये कामना सूक्ष्म में बनी रहती है कि लोग मेरा सम्मान करें। हम कहीं जाए तो लोग उठ के हमको चेयर दे दे, हम कहीं जाए तो मेहमान नवाजी हो, हम कहीं जाए तो लोग हमें जाने, हमें पहचाने, हम कहीं जाए और कोई हमारे तरफ ध्यान ही ना दे, दुख होता है। ये सूक्ष्म में अपने ऊपर काम करने की बात है कि हमें किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं। हम वो सम्मान दे तब हम महत्वपूर्ण होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, दूसरी निशानी वो सब वो कैसा होगा? निर्माण। तीसरी निशानी बाप का प्यारा और सर्व का प्यारा होगा। वो कैसा होगा? बाप का प्यारा और सर्व का प्यारा। और चौथी निशानी फॉलो फादर। तो बाबा ने अपने बारे में चार बातें बताई है। बाबा ने युद्ध को क्या कर दिया, गृहस्थियों को क्या कर दिया, प्रवृत्ति वालों को, और बाबा ने कुमारियों को क्या कर दिया और बुजुर्ग को क्या कर दिया। विठल भाई क्या क्या किया चारों को? युद्ध को क्या कर दिया बाबा ने? विनाशकारी थे, विश्व कल्याणकारी बना दिया। कुमारियों को क्या कर दिया? शिव शक्ति स्वरूप बना दिया। बुजुर्ग को क्या कर दिया? ब्रह्मा के हम जींस। और चौथा गृहस्थी माताओं को क्या कर दिया? जो महात्मा है, जगत गुरु है, परवृत्ति में रहने वाले हैं, उनको चरणों में झुका दिया। तो फॉलो फादर करने वाले हैं। तो ये चारों निशानियां चाहिए उनमें जो समानधारी है। पहला, सबको सम्मान देना। जब वो ओम शांति कहेगा तब हम कहेंगे, जब वो गुड मॉर्निंग कहेगा तब हम कहेंगे, ऐसा ना। सबको सम्मान देना, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम किसी के पीछे ही पड़ जाए या चाटुकार बन जाए। सम्मान देना अर्थात अनस्पोकन डिजायर्स को फुलफिल करना, जो उसने कहा भी नहीं है और उसकी इच्छा है उसका भी मान रखना। समझ में आ रहा है? उसकी वो इच्छा है, कर दो पूरी उसकी इच्छा, अगर हम कर सके तो। और एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सूक्ष्म बात है मधुबन की। मधुबन में हरेक को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया हुआ है। हम ये ना भूले कि ये डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज नहीं हूं, मुझे ये संभालने के लिए दिया गया है बस। अगर कोई अपने आप को ऑफिसर ही समझने लगे, एचओडी ही समझने लगे, इंचार्ज ही समझने लगे, तो निमित्त भाव खो जाएगा और दूसरे जो संपर्क में आएंगे उनको डिस्टर्बेंस होगा। तो समानधारी अर्थात सबको सम्मान देने वाले, समानधारी अर्थात निर्माण, समानधारी अर्थात तीसरा प्यारे, बाप के और सर्व के, समानधारी अर्थात चौथा फॉलो फादर। जैसे बाप ने सभी को सम्मान दिया, वैसे सबको सम्मान देने वाले, ये चार निशानी है। उसके बाद अगला प्रश्न बाबा ने पूछा है, यहां तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो? तो कैसे आए हो? स्नेह के चुंबक में खींचा है। अगला प्रश्न पूछा है, बाप का प्यार सबसे क्यों है? उत्तर बता दिया, क्योंकि सबने क्या कहा? मेरा बाबा, और सबने पहचान लिया। उसमें भी डबल विदेशी होने के लिए क्या कहा आगे? तीखी नजर है, तेज नजर है, जो भिन्न भिन्न कल्चर में रहते हुए भी बाबा को पहचान लिया और यहां आ गए। और उनकी तीन विशेषताएं सुनाई, एक तो लौकिक जॉब, सेंटर में भी सेवा करते हैं और ज्ञान की भी सेवा करते हैं, स्थूल सेवा भी करते हैं और ज्ञान की। इसीलिए हम केवल एक प्रकार की सेवा ना करते रहे, तीन चार प्रकार की सेवाएं साथ साथ चालू रहे। एक तो जो स्थूल सेवा है हमारी, जो प्रोफेशन है, जो स्थूल सेवा है, जो लौकिक सेवा है, अलौकिक सेवा दी गई है, उससे बहुत सारी आत्माओं का कल्याण हो। मतलब एक दिन में हमें ढेर सारी आत्माओं की दुआएं मिले। जरूरी नहीं है हम सबको ज्ञान सुनाकर ही सेवा करें, पकड़ पकड़ के किसको ज्ञान सुनाए, ये सेवा नहीं है। उसकी कोई स्थूल सेवा कर दे, उसे कुछ चाहिए वो उसको दे देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। उसे याद रहेगा, जीवन पर्यंत याद रहेगा कि मुझे, वो सारे भूल जाएंगे। मधुबन में लोग आते हैं, शिविर अटेंड करते, किसको याद रहता है कोई लेक्चर? कुछ लेक्चर याद नहीं रहता। याद कौन रहता है? जिसने चार धाम की यात्रा कराई थी या जिसने घुमाया था, जिसने भोजन के लिए लेके गया था, या फिर यहां आने के बाद बीमार पड़े थे तो भोजन पहुंचाया था, वो ही व्यक्ति याद रहता है। वो ज्ञान वाले तो, वो लेक्चर देने वाले तो पता नहीं, गए सारे, कोई भी याद नहीं है, ना उनका लेक्चर याद है ना वो याद है। याद कौन रह गया? जिसने गाड़ी करके दी थी, गाड़ी मिस हो गई थी, जिसने अपना योग का समय छोड़कर हमको दिया था, समय दिया था वो व्यक्ति याद रहता है, जो नीड के समय हेल्प करता है, आवश्यकता है तब हेल्प करता है, वही याद रहता है, बाकी नहीं याद रहते। तो तीनों प्रकार की सेवा दिन भर होती रहे, ये तो विदेशियों का कहा, पर हमारी बहुत सारी प्रकार की सेवा होती रहे। एक साथ सुबह सकाश भी दे दी, दिनचर्या को भी हम एक्यूरेट अगर रखते हैं, हम अपने जीवन में यदि संयम लाते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कहा, किसी को ना कुछ सिखाया ना कुछ बोला, पर हमने अपने आप को इतना नियंत्रित रखा हुआ है, हमारी दिनचर्या ऐसी है कि जहां पर एक मिनट भी इधर उधर नहीं है, कहीं पर किसी ने आज तक हमको देखा नहीं है कि यहां बैठकर व्यर्थ डिस्कशन में वो भागी है, कहीं पर भी ऐसा किसी ने आज तक हमको देखा नहीं है, तो हम सैंपल है सबके लिए। एक मिनट भी जिसका वेस्ट नहीं होता है, सारा समय ज्ञान योग सेवा चिंतन, हम एकांत में है, किसी से कुछ कह नहीं रहे, किसी से कुछ बोल नहीं, मुरली का खाली चिंतन कर रहे, कितनी बड़ी सेवा है। क्योंकि हमारा इतना श्रेष्ठ चिंतन के प्रकंपन जो निकल रहे विश्व में फैल रहे, सारे विश्व में तो डर है, भय है, ऐसे विकारी विश्व में हम श्रेष्ठ चिंतन के, मुरली के चिंतन के संकल्प कर रहे, कितनी बड़ी सेवा है ये, ना किसी को दिख रही, अदृश्य सेवा है, कोई कुछ नहीं कह रहे किसी को, चुपचाप है, मौन में रहना, यह भी सेवा है, संयमित कर देना अपने आप को, सेवा है। तो ये एक प्रश्न पूछा, उसके बाद में बाबा ने कहा किसी की कमजोरी ना देखो। अब इसके लिए क्या कहे, वो तो वशीभूत है, और तुम कौन हो, वशीभूत मंत्र देने वाले हो, वशीकरण मंत्र देने वाले हो। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यदि हम किसी की कमजोरी देख रहे हैं तो क्या करें। अभी अभी हमने सुना मुरली में कि हमें सबको सम्मान देना है, और अचानक हमारे सामने एक ब्राह्मण आत्मा आ जाए जो चार लोगों का अपमान करके हमारे सामने निकल जाती है, अब उसको हम सम्मान कैसे दे, जिसने अभी अभी चार लोगों की, हमारे ही सामने चार छोटे सेवाधारी थे, उनकी अभी अभी इंसल्ट की, बहुत बुरी तरह से इंसल्ट की, जिनकी इंसल्ट की उनको छोड़ दो, पर जिसने की वो भी ब्राह्मणी है, उसको हम सम्मान कैसे दें, उसकी तो कमजोरी एकदम आंखों के सामने दिखी, उसका क्या करें। कुछ नहीं करना है, वह दमन हो जाएगा कि यदि हमने देखा कि ऐसा है, हमने मन को दबा दिया, फिर निकलेगा और डर भी रहेगा, आज उनकी इंसल्ट की कल मेरी भी कर सकता है, एक भगवान का आदेश है, ठीक है। ऐसे समय पे ये देखना है, ये सीखना है कि जो इसने किया ऐसा मुझे नहीं करना है, उससे ये सीखना है। और उस समय वो क्या है, वशीभूत है, परवश है, वो परम वशीभूत है। जैसे कोई व्यक्ति दारू पी लेता है और जो चिल्लाता है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, मधुबन माउंट आबू में लोग क्यों आते हैं सैटरडे संडे, और फिर ज्यादा जब हो जाती है तब अस्पताल में आते हैं, एक एक को पकड़ के चार लोग आते हैं, और जो चार होते वो भी थोड़ा कम, संभालना मुश्किल हो जाता है, इतना चिल्लाते हैं, पर हमको गुस्सा नहीं आता है किसी को भी उस पर, क्यों, क्योंकि पता है अंडर इन्फ्लुएंस है, पिए हुए है, जब उतर जाएगी ना तो फिर जब दूसरे दिन इतनी माफी मांगते हैं तो इतना सभ्य व्यवहार करते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कल वाला व्यक्ति और ये एक ही है, क्यों गुस्सा नहीं आता है उस समय जो दारू पीता है उस पर, क्योंकि उस समय हमें क्या पता है, बिचारा है, अंडर इन्फ्लुएंस है, बिचारा क्या करे, नशे में है, इसलिए तो चिल्ला रहा है, हमें उस पर गुस्सा नहीं आता है। और एक दूसरी बात, हम यदि नक्की में नौका विहार कर रहे हैं, ठीक है, हमारी नाव है, हम बैठे हुए हैं, उधर से दूसरी नाव आके हमारी नाव को टकरा दे, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पर यदि उस दूसरी नाव में कोई है नहीं, खाली नाव है वो, द एम्प्टी बोट, तो गुस्सा आएगा नहीं? क्यों? क्यों? हम चल रहे हैं, चलते चलते पैर फिसल गया, गिर गए, गुस्सा आएगा नहीं? हम चल रहे हैं, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और वो भी हमारा मित्र, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एम्प्टी बोट समझना है, खाली ना हो, गुस्सा नहीं आएगा। फिर क्या समझना है? वो क्या है? वशीभूत है, एक। दूसरा, उससे मुझे सीखना है। क्या सीखना है? कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तीसरा, द एम्प्टी बोट, ये समझना है कि अगर नहीं भी होता, उसके बगैर भी अगर ऐसा हो जाता तो मैं गुस्सा करता क्या? नहीं। तो जब भी किसी की बाबा ने कहा कमजोरी देखो ही नहीं, और जब दिखे किनारा कर लो, अवॉइड करो, ज्यादा वर्णन नहीं करो, ध्यान नहीं दो, ठीक है। और फिर यह भी सोचना है, शायद मैं इसकी जगह होता तो हम भी तो ऐसा ही करते, जब मेरी सोच वैसी थी तब मैं भी वैसा ही करता था, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत आगे निकल गया हूं। जब मैं इसके जैसा था तब मैं भी यही सब करता था। अभी तो मैं थोड़ा सा, मेरी समझ बढ़ी है, थोड़ा एकांत बढ़ा है, थोड़ा मुरली चिंतन किया है, थोड़ा ज्ञान समझा है, तो कहीं मुझे जाके अब समझ में आया है। अगर 10 साल पहले बुद्ध गांव से जा रहे, लोग आते गालियां देते, सबको कहानियां पता है, बुद्ध कहते हैं तुमने गलती कर दी, देरी कर दी, तुम 10 साल पहले आना चाहिए था तो मैं तुमको ईंट का जवाब पत्थर से देते, तुमने लेट कर दिया है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसके लिए तुम्हारी गालियां तुमको। तुम पहले अगर आए होते तो हां, फिर देखना मजा चका दिया होता। ये जो कहा ना तुमने, बहुत बुरा कहा। तो कमजोरी देखो ही नहीं। तो बाबा ने कहा तुमको सर्टिफिकेट इस ब्राह्मण परिवार से लेना है। क्यों विठल भाई? क्योंकि बाबा क्या स्थापन करने आए हैं? धर्म और राज्य परिवार, इसीलिए इस परिवार से भी सर्टिफिकेट तुमको लेना है। तो सबसे प्यार, छोटे से भी प्यार, बड़ों से भी प्यार, साथी से भी प्यार, ज्ञानी से प्यार, अज्ञानी से प्यार, स्तुति करने वाले से प्यार, निंदा करने वाले से प्यार। और ज्यादा हमको कौन सिखाता है, जो स्तुति करता है वो या जो निंदा करता है वो? जो निंदा करता है वो हमको सिखाता है। कोई हमको कहे बाप रे तुम्हारा क्लास बहुत अच्छा भाषण था, बहुत हम तो प्रभावित हो गए, कोई ऐसा कहे तो इसमें कोई अंतर्मुक्ता आती है क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें तो और अहंकार फूलता है। और दूसरा आके कहे भाषण तो बहुत झाड़ते हो, प्रैक्टिकल में तो कुछ दिखता नहीं ठेस लगती है ना, ये तुम जो कुछ सुना रहे हो ना, ये तो तुम्हारा नहीं लगता है, कहीं से चुराया हुआ है, ठेस लगती है फिर। हाँ, रटा रटाया है और कुछ नहीं है इसमें, ऐसी बातें है खाली, फालतू है, दिखता तो कुछ नहीं, खाली बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। तो चाहे कोई भी हो, हम सम्मान इसलिए नहीं दे रहा है कि वो क्या है, हमें सम्मान इसलिए देना है कि भगवान का आदेश है, ये मुरली में बाबा की श्रीमत है। सभी को सम्मान दो इसलिए देना है क्योंकि वो खुद वैसा कर रहा है, ये बाप सम्मान बनने की एक स्टेप है। और हर एक का पार्ट अलग है, उस दिन भी सुना है, ड्रामा की राज है, एवरीबडी इज डिफरेंट, हर एक भिन्न है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। अगली पॉइंट है बाबा ने कहा वायदा और फायदा, कि मेहनत मुक्त बनने का ये वर्ष है, तो जो भी वायदा किया जाता है, जो भी प्रतिज्ञा है, कल भी हमने चर्चा की थी, छोटे छोटे संकल्प लेने हैं और फिर क्या करना है, अमृत वेले के बाद रियलाइज, और रियलाइज अर्थात अनुभूति, और रिवाइज अर्थात उसको पुनरुक्त करना है, उसको रिवाइज करना है माइंड में। जैसे हमने एक संकल्प ले लिया है कि मुझे आज की जो मुरली है उसमें से बस दो बातें ऐसी लेनी है जिन पर बहुत गहरा मनन करना, बस दो ही बातें, ज्यादा नहीं लूंगा। तो अमृत वेले के बाद रिवाइज करो उसको कि ये मुझे रियलाइज करो, ये आज मुझे करना है और उसको रिवाइज करना है दिन भर। वो कौन सी दो पॉइंट है पावरफुल कि जो मुझे रिवाइज करनी है। कोई भी छोटा से छोटा संकल्प लेना, कायदा वायदा, और उसके फिर मुझे फायदे क्या क्या होंगे। मैं ये करता हूं, ये अगर करूं तो क्या होगा, मैं ये खाता हूं अगर ये खाया तो क्या होगा, मैं यहां जाता हूं ये अगर नहीं गया ये किया तो क्या होगा। कुछ भी छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे वायदे। एकदम बड़ा सा वायदा मत करना, मैं आज से बाप समान बन जाऊंगा शाम तक, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, हाथ में कुछ नहीं आएगा। वायदे कैसे हो, एम टारगेट कैसा हो, छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे छोटे। आज कहीं पर भी जहां व्यर्थ चिंतन हो रहा है, मैं एक मिनट भी वहां खड़ा नहीं रहूंगा। आज जैसे ही मैं लोगों से अपनी निंदा सुनूंगा, अचल अडल रहूंगा, क्योंकि लोग तो निंदा करेंगे ही। जो जितना सत्य बोलेगा उसकी उतनी ज्यादा निंदा होगी, जो दूसरों को खुश करेगा उसकी कम निंदा होगी। ज्यादा पॉपुलर और फेमस कौन बनते हैं, जो ऑडियंस को खुश करने की कोशिश करते हैं। और जो कड़वे प्रवचन, कटु वाणी बोलते हैं, थोड़ा सा सत्य बोलते हैं, वो उनके विरोधी भी बहुत होते हैं। पर अंदर से उनको भी पता होता है कि ये जो कह रहा है यही सत्य है, हम नहीं कर सकते वो दूसरी बात है, इसलिए बाहर से निंदा करो। पर अंदर से हर एक महसूस करता है कि ये काम हमको 30 साल पहले ही करना चाहिए था, ऐसा गहरा मुरली का चिंतन तब करना चाहिए था, क्यों हमारे 30 साल व्यर्थ में चले गए, पॉलिटिक्स में, राजनीति में चले गए, अध्यात्म में आके हमने क्या किया। ऐसे स्थान पर जहां इतना मौन और एकांत है, हमें कुछ और करना चाहिए था, कुछ और ही करते बैठे। अब आंख खुली, समय बीतने के बाद कबीर कहता है, कबीर के जो भी प्रवचन है उसको उलट बासी कहते हैं, उल्टे है वो। एक अचंबा हमने देखा नदिया लागी आग, कबीर कहता है एक अचंबा हमने देखा नदिया लागी आग, नदी को आग लगी है ये अचंबा, मौत सामने खड़ी है पर व्यक्ति सोचता है मरूंगा ही नहीं, ये अचंबा हमने देखा नदिया लागी आग। तो जो भी प्रतिज्ञा है, ओथ्स, प्लेज, प्रतिज्ञा, वायदे, प्रॉमिसेस, डिसीजंस, संकल्प किए जाए, उनको क्या करना है, रिवाइज करते रहना, बार बार याद कर, और किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे अपने संकल्प है, हमारी अपनी प्रतिज्ञा है, हमारे अपने डिसीजंस है, खुद ही उनका पोषण करें अंदर ही अंदर। और वो इतने सूक्ष्म होने चाहिए और इतने गुप्त होने चाहिए कि किसी को उसका कोई खबर, क्योंकि जैसे हम बता देते हैं खत्म। ये मास, ये साल खत्म होने को कितना समय बाकी है, दो महीना, ये महीना, ये साल खत्म होगा। ये साल खत्म होने से पहले हमें क्या करना है, 2 महीने में इसका आज पुरुषार्थ बनाना है, आज प्लानिंग करनी है अगले 2 मास की, कि मेरी वो सबसे गहरी कमजोरी जिसने मुझे सबसे ज्यादा धोखा दिया है, रुलाया है और पकड़ में ही नहीं आती, वो पकड़ने जाओ तो नीचे नीचे यहां तक हाथ पहुंचा है, वो वहां है, क्या ऐसा करूं नया कि वो मैं पकड़ लूं। उस कमजोरी को पकड़ने के लिए योग को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थी अव्यक्त मुरली, फिर सेवाधारियों से, इंदौर ग्रुप से मुलाकात है, डबल विदेशियों से मुलाकात है। 1 मिनट के अभी बाबा ने वो कहा ड्रिल जैसा कि याद करो, तो ये भी कर सकते हैं कि सारे दिन भर कई बार 1-1 मिनट जो संकल्प कर लिया उसको याद करते रहना है। जैसे स्लोगन, सारे दिन भर देखो स्लोगन मुझे याद है, सारे दिन भर देखो वरदान मुझे याद है, पूरे मुरली का कोई भी एक पॉइंट मुझे याद है, या ये जो अव्यक्त वाणी चली थी इसमें का कुछ याद है। और हर दिन कुछ ना कुछ नया जोड़ना है पुरुषार्थ में, नवीन कुछ तो करना है, एक एक ही करते रहे तो बोर हो जाते, हर दिन नया नया होता रहे। तो स्नेही बनना है, सबको सम्मान देना है, स्वमान में रहना है और स्वमान सम्मान से सबको देखना है, यही ज्ञान का सार है, यही तो तुमको करना है। यही तो ब्राह्मण जीवन का कार्य है। अच्छा, ओम शांति।
जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीति।